समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ। हम हाजिर हैं आज सवेरे के एक और अंक को लेकर। सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने दस्तक देने लगते हैं, इसीलिए आत्मविश्वास के साथ सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए जुट जाएं। तो सुबह की शुरुआत क्यों ना इस प्यारे से गीत से करें।
छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में।
तो ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म रोजा से मिनमिनी की आवाज में।
Hello Farhat and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani Network. And thank you Farhat, itne pyare se gaane ke liye is subah. And dear listeners, we bring to you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we will give you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 28th of November. So let's begin with the headlines, Farhat.
जी बिल्कुल रेनू, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक और गोवा के दौरे से जुड़ी खबर से। श्री मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री द्वारा आज स्वर्ण लेपित तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी होगा और सोने का कनक का किंडी समर्पित होगा। ये माना जाता है कि भक्त कनकदासा को अपने दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये खिड़की खोली थी, जिसे कनक का किंडी कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री के आगमन की वजह से जिला प्रशासन ने वाहन संचार और पार्किंग पर निर्बंध जारी किया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये निर्बंध जारी रहेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
Prime Minister Narendra Modi will be on a two-day visit to Chhattisgarh beginning tomorrow. The Prime Minister will participate in the 60th edition of the All India Conference of Director Generals or Inspector Generals of Police. The three-day conference, which will begin today in Raipur, aims to review the progress achieved in addressing key policy challenges so far and to outline a forward-looking roadmap for building a Surakshit Bharat in alignment with the national vision of Vikasit Bharat. Mr. Modi will also confer the President's Police Medals for Distinguished Service. The conference will also be attended by Union Home Minister Amit Shah, National Security Advisor Ajit Doval and Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar. President Draupadi Murmu will visit Lucknow today, where she will take part in two functions. President will grace the launch ceremony of the Brahma Kumari's annual theme for 2025-26, Meditation for World Unity and Trust. On the same day, the President will grace the closing ceremony of the Diamond Jubilee celebrations of Bharat Scouts and Guides and address its 19th National Jamboree. Additional General Secretary of Brahma Kumaris, Dr. Mrityunjay, informed that after the launching, the President will also do meditation at the training center and distribute flag and kalash to 5 women and 5 men each. He said that after the state-level launching, various programs will be organized across the state on the theme for 2025-26, that is, Meditation for World Unity and Trust. Later in the afternoon, the President will address the valedictory session of the Diamond Jubilee celebrations of Bharat Scouts and Guides and address its 19th National Jamboree.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और अंतिम उपाधियां और प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि इसमें देरी से विद्यार्थियों के अवसरों का नुकसान होता है और उन्हें उपयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार पाने में भी बाधा आती है। आयोग ने बताया कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
The 56th International Film Festival of India, IFFI 2025, will conclude today in Goa with a grand closing ceremony paying tribute to the legendary actor Dharmendra. The festival, which began on November 20, showcased over 240 films from 81 countries, highlighting the best of global cinema. More from our correspondent.
IFFI 2025 is heading to the closing ceremony today in the evening, which will be attended by Chief Minister Pramod Sawant, Secretary Ministry of INB Sanjay Jaju, and Festival Chairman Shekhar Kapoor, among a host of other important dignitaries. The ceremony will also felicitate superstar Rajinikanth, celebrating 50 years of his cinematic journey. The festival featured over 240 films from 81 countries. A number of masterclasses were held during the festival that brought insights from industry experts, including Shekhar Kapoor, Rajkumar Hirani, Aamir Khan, Ramesh Sippy, Muzaffar Ali, Nagarjun, among others. Cinematic legends like Guru Dutt, Raj Khosla and Ritwik Ghatak were also honored. Recognizing excellence in cinema, the Golden Peacock Award, the Silver Peacock Award and the ICFT UNESCO Film Award will also be given tonight. Everyone is waiting to know which film will bag the Golden Peacock. The 56th edition of IFFI was indeed a testament to the power of cinema, bringing together filmmakers, actors and enthusiasts from around the world. With Adarshan Nikhil, this is Zahra Mujtaba for Akashvani News from IFFI, Goa.
और अब मौसम की जानकारी ले लेते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात दित्वा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इससे देश के पूर्वी तटवर्ती इलाकों में पहली दिसंबर तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। देश के दक्षिणी राज्यों में भी इस दौरान गरज के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और कन्याकुमारी के आसपास के क्षेत्रों में सोमवार तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं पंबन, थुत्तुकुड़ी, नागापट्टिनम, कराईकल, चेन्नई और कुड्डालोर बंदरगाहों पर तूफान संबंधी जानकारी जारी की गई है। दक्षिणी तटवर्ती इलाकों के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी भागों में अगले तीन दिन में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं हांगकांग के ताइपो जिले में एक आवासीय परिसर में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 280 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी भवनों में फंसे हुए हैं। कुल 76 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दमकलकर्मी लगातार दूसरे दिन इस ऊंची आवासीय इमारत में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। इमारत के अंदर अभी भी आग की लपटें देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में बचाव अभियान अभी चल रहा है। चार इमारतों में लगी आग को प्रभावी रूप से बुझा दिया गया है। लगभग 900 लोगों को अस्थायी आश्रय में पहुंचाया गया है। और अब श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले हम जानते हैं चेन्नई में क्या है खास।
जी बिल्कुल फरहत, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीज 22 लाख रुपीस इन कैश एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वर्थ ओवर 1.50 करोड़ रुपीस व्हाइल कंडक्टिंग सर्चेस एट प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन द आरुधरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम। The ED conducted searches at 21 locations in Chennai, Kanchipuram, Mumbai and Kolkata on Wednesday. The agency stated yesterday that fraudsters had named dummy individuals who perform menial jobs in the firm as directors of Arudhra Gold Trading Private Limited. The ED recovered and seized incriminating documents and digital evidence related to investments, property holdings and the layering of funds. More news. Tamil Nadu will soon launch virtual tumor boards to tackle cancer burden by extending cancer guidance beyond major centers by January next year. The initiative will be jointly operated by the National Health Mission, the TN Cancer Care Mission, the Directorate of Medical Education and the Directorate of Medical and Rural Health Services. Based on the model of institutional tumor boards already functioning in regional cancer centers, VTBs will allow specialists in hubs to advise oncologists and doctors in spoke hospitals without such facilities on complex or critical cases. The president of Tamil Nadu Association of Surgical Oncology, S. Subbaiah, said that the idea is to standardize cancer care in public health care. Aur ek aur news hai hamare paas Chennai Metro se Farhat. In the ongoing special intensive revision, SIR 6.23 crore enumeration forms have been distributed to 6.41 crore voters in Tamil Nadu. The electors have received the enumeration forms, have been requested to fill their forms and submit it back to the booth level officer and need not wait till the 4th of December. Each of the 12 recognized political parties shall not submit more than 50 forms per day with an undertaking and submit to the concerned BLO. More than 2,40,000 BLAs are involved in this exercise.
जी अब चेन्नई से दिल्ली का रुख कर लेते हैं. 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया. इस वर्ष मेले की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत. मेले के अंतिम दिन अलग अलग श्रेणियों के लिए पुरस्कार भी दिए गए. भागीदार राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला जबकि राज्य श्रेणी में झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता. राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की श्रेणी में उड़ीसा को स्वर्ण, मध्य प्रदेश को रजत और पुद्दुचेरी को कांस्य पदक मिला. मंत्रालय और विभाग श्रेणी में रक्षा मंत्रालय को स्वर्ण और खान मंत्रालय को रजत पदक दिया गया. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज ने बताया कि इस साल मेले में 18 लाख से ज्यादा लोग आए. डॉ. नीरज ने कहा कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन का उद्देश्य अगले मेले के लिए लोगों के फीडबैक को शामिल करना और मेले को और बेहतर बनाना है. वहीं दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में खादी के माध्यम से युवाओं को रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता का नया आयाम मिल रहा है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि 50 करोड़ रुपए की नई पहल के तहत 13,900 से अधिक युवाओं को खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस योजना के भावी अवसरों के बारे में उन्होंने बताया कि इस योजना से न केवल स्थानीय कारीगरों की मेहनत को सम्मान मिलेगा बल्कि खादी के पारंपरिक उत्पादों को भी राष्ट्रीय से वैश्विक पहचान मिलेगी. श्री सिरसा ने कहा कि खादी अब सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि दिल्ली की शान, कारीगरों का सम्मान और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगी.
Moving on to Bengaluru Metro, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah launched the Digital Mobile Planetarium to strengthen science learning in rural Karnataka. The aim is to spark scientific curiosity in rural children and bring high-quality science education closer to them. The program is infused with upgraded technology and an expanded delivery model. The mobile planetariums operating in limited districts of the state will be expanded to all the districts in the coming months to receive modern science. The digital mobile planetarium is a custom-built vehicle equipped with a 5-meter dome, 360-degree fish-eye projection, air conditioning and advanced audio systems. The mobile learning van will tour in villages to bridge the urban-rural digital gap with access to planetarium learning. The students will have an opportunity to explore the universe from their own school premises.
और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि शहर में वायु प्रदूषण के लिए केवल इथियोपिया से आने वाले ज्वालामुखी राख को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने बताया कि सप्ताह ज्वालामुखी विस्फोट से पहले भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब रहा है. अदालत मामले की आज सुनवाई करेगी. वहीं महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनावों की घोषणा में कुछ ही दिन शेष है. ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव और राज ने कल बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनावों के लिए सीट बंटवारे की योजना और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात की. शिवसेना और एमएनएस के मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे और नासिक में एक साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद है. 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव 2 दिसंबर को होंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी.
एंड फरहत, आई हैव अ कपल ऑफ न्यूज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो. तो पहली सुनाते हैं. Telangana State Election Commission has opened a grievance module in the wake of Gram Panchayat elections in the state for people lodging their grievances, if any. The option has been created on its website tsec.gov.in/home.do. People have to register before lodging the grievance, progress of which can be tracked. The Commission stated that this initiative promotes transparent and accountable elections by actively engaging people in strengthening democracy and builds a sense of responsibility among them. The elections to 12,278 village panchayats and 1.12 lakh wards will be held in three phases, December 11th, 14th and 17th. Receiving nominations began for the first phase yesterday. Aur dusri khabar, IIT Hyderabad will be hosting the country's biggest gatherings of metallurgists and material scientists at its campus from 4th to 6th next month. IIT Hyderabad Director and President of Indian Institute of Metals, IIM, Professor B.S. Murthy said the conference will deepen industry-academia ties through presentations by leading experts and researchers. Briefing the media in Hyderabad late last evening, he said the three-day event combines the 79th annual technical meeting of the IIM and an international conference on advanced materials and critical minerals for energy transition. He further said about 1,600 participants, including a large number of students presenting their work. There will be over 400 oral presentations in 14 parallel sessions.
So it's an interaction platform. This year we are expecting about 1,600 people to come from young to the old and discuss about what are the great things that are happening in metallurgy. And we hope that this will not only help in discussion and interaction, but also help in directions for the government to take in the fields, which are the fields where there should be more focus so that India becomes not only Atmanirbhar, but also a Viksit Bharat. So that's the goal.
Dr. S.V.S. Narayan Murthy, Vice President of the IIM and CMD of Mishra Dhatu Nigam, said the events will set the stage for meaningful discussions among stakeholders to advance self-sustainability.
और अब हम लोग हैदराबाद से कोलकाता का रुख कर लेते हैं. पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट की पहली स्तरीय जांच प्रक्रिया कल 8 जिलों में शुरू हो गई. ये जिले हैं दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और पुरलिया. इन 8 जिलों में 10 स्थानों पर एफएलसी की जांच की जा रही है. इससे पहले चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह कोलकाता के न्यू टाउन में एफएलसी पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था. और अब आइए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के मौसम का हाल जान लेते हैं. आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है और दिन भर ऐसी ही स्थिति रहेगी. न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. शहर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास.
And talking about Chennai, Farhad, Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and the maximum will be around 25 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
और रेनू, अब आइए इतिहास के पन्नों पर एक नजर डाल लेते हैं. बात सबसे पहले 1872 की. विल्हेल्म रीस विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपाक्सी के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले पर्वतरोही बने.
And if you talk about the year 1821, Farhad, on this day, Panama declared its independence from the Spanish Empire. And in the year 1895, on this day, Frank Duryea won the first motor car race in the United States.
वहीं 1893 में न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया.
In 1912, on this day, Albania declared its independence, and in 1919, Lady Astor became the first woman to sit in the British House of Commons.
और 1967 में ब्रिटेन में फुट एंड माउथ बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह की घुड़दौड़ पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई गई.
1925 on this day, Grand Ole Opry, one of the longest lived and most popular showcases for Western music, began radio broadcasting live from Nashville, Tennessee. And in 1960, Mauritania declared its independence and left the French community.
वहीं 1964 में नासा के मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह के मिशन पर आज ही के दिन लॉन्च किया गया
और इन द ईयर 1966 ऑन 28th ऑफ नवंबर कैप्टन इंद्राणी सिंह बिकेम द फर्स्ट वुमन टू कमांड एन एयरबस A300
और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को या फिर जिनका आज है जन्मदिन तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी की वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे और उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया उनके कहानी संग्रह में हिमायती महुए का पेड़ अरण्य में हम धरती पुत्र महाबली काफी लोग प्रिय रहे इसके अलावा बाल साहित्य पर भी उन्होंने काफी काम किया शाबाश मुन्नू सहित बच्चों की कहानियों की कुल 16 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं इसके अलावा उन्होंने अनुवाद में काफी सक्रिय रूप से जुड़े रहे बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुदित 50 से भी अधिक पुस्तकें उनकी आईं
Today we are paying tributes to Daniel Joseph Anthony Meehan, professionally known as Tony Meehan, who was a founder member of the British group The Drifters with Jet Harris, Hank Marvin and Bruce Welch, which would evolve into The Shadows. यहाँ पर हम एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं called Footstomp और फिर थोड़ी सी और उनके बारे में बात करते हैं
Stopped outside the doorway to listen to the record machine. The tune that they were playing was going through my head. But now I've heard that tune so much I wish that
He played drums on early Cliff Richard and the Shadows hits and on early Shadows instrumentals. Meehan was professionally nicknamed the Baron by his many admirers and friends within the British pop rock music industry.
और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक भालजी पिंडारकर को जिनका आज जन्म हुआ था इन्हें सन 1991 में सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनका पूरा नाम भालचंद्र गोपाल पिंडारकर था सिंहगढ़ की शूटिंग के लिए उन्होंने पहली बार रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया पिंडारकर पुणे के सिनेमाघर में गेटकीपर थे 1927 में वंदे मातरम आश्रम बनाने की वजह से वो गिरफ्तार हुए पिंडारकर ने 88 साल की उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म शाबाश सुनवाई बनाई और आइए सुन लेते हैं मराठी का ये गीत
Today is the death anniversary of Enid Mary Blyton, who was an English children's writer whose books have been among the world's bestsellers since the 1930s, selling more than 600 million copies. Blyton's books are still enormously popular and have been translated into 90 languages. She wrote on a wide range of topics including education, natural history, fantasy, mystery and biblical narratives and is best remembered today for her Noddy, Famous Five and Secret Seven series. Her first book, Child Whispers, a 24-page collection of poems, was published in 1922. और आज ही डेथ एनिवर्सरी है फरहत कैथरीन रोजलिंड रसल की हु वाज एन अमेरिकन एक्ट्रेस कॉमेडियन स्क्रीन राइटर एंड सिंगर अ नोटेड कॉमेडियन शी वन ऑल 5 गोल्डन ग्लोब्स फॉर विच शी वाज नॉमिनेटेड रसल वन द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ म्यूजिकल इन 1953 फॉर हर पोर्ट्रेयल ऑफ रूथ इन द ब्रॉडवे शो वंडरफुल टाउन सो हियर लेट्स लिसन टू अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कॉल्ड अ लिटिल बिट इन लव
I'm a little bit in love, never felt this way before. Just a little bit in love, or perhaps a little bit more.
Today is the birthday of Randall Stuart Newman, who is an American singer, songwriter, arranger, composer, and pianist who is known for his distinctive voice, pop songs, and film scores. And you know, Farhad, Newman ko kiske liye sabse zyada jana jata hai? For his movie Toy Story, A Bug's Life, Toy Story 2, Monsters, Cars, Monsters University, aur aisi bahut sari. Aur mujhe pata hai ki aajkal ke bachche
jo hai wo monster pe qurban hai.
Ji bilkul. So isi se related, you know, we will listen to this song, which is full of childhood memories for some of us. So let's listen to this beautiful song from the movie Toy Story.
You're my favorite deputy.
You've got a friend in me. You've got a friend in me.
Boys, look, an alien! Where?
Rough ahead and you're miles and miles from the nice warm
I'm Picasso.
Yeah, I don't get it.
You just remember
you a cultured swine. What are you looking at, you got a friend in me.
It's not a laser.
It's a little light bulb that blinks.
श्रोता आइए अब याद कर रहे हैं हम शंकर शेष को वे नाटक साहित्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक थे समकालीन परिवेश और युगीन परिस्थितियों से उनके व्यक्तित्व की संवेदनशील का निर्माण हुआ शंकर शेष बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखक के रूप में पहचाने गए वे मुंबई में एक बैंक में हिंदी अधिकारी भी रहे उनके फंदी एक था द्रोणाचार्य रक्त बीज आदि नाटकों से उनकी ख्याति बढ़ी उनका शोध प्रबंध हिंदी मराठी कहानीकारों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित था शंकर शेष अत्यंत हृदय और गुट निरपेक्ष लेखक थे उनके द्वारा रचित घरौंदा कथा पर हिंदी में एक प्रसिद्ध फिल्म घरौंदा बनी और इसमें अमोल पालेकर का किरदार काफी पसंद किया गया तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत
शहर में रात में या दोपहर में
आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं
आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने
Farhad, today we are paying tributes to Major Sandeep Unnikrishnan AC, who was an Indian Army officer who was serving in the 51 Special Action Group of the National Security Guard on deputation. He was killed in action during the 2008 Mumbai terror attacks and was posthumously awarded the Ashok Chakra, India's highest peacetime gallantry award, on 26 January 2009. His courage and resilience strengthen our resolve to defend India against terrorism and uphold national unity and security. And today is the birthday of Edward Allen Harris, who is an American actor, producer, director and screenwriter. Aur unki bahut sari movies hai, Apollo 13, The Truman Show, Pollock, The Hours, which have earned him critical acclaim in addition to Academy Award nominations. But here we are going to listen to this dialogue from the movie The Rock, where he is a decorated general, recently released from Alcatraz. Aur baki aap aur hamare listeners, khud hi sunein ki wo kya keh rahe hain.
81. I say again, 81 civilians are under my control as of this moment. You are to take measures to assure this remains a need-to-know classified fact.
Who is this?
Mr. Director, you have a very serious problem. A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. I will call again at 0100 hours to state my demands.
I want to know who I'm talking to.
This is Brigadier General Francis X. Hummel, United States Marine Corps from Alcatraz. Out.
और आज भारतीय अभिनेत्री यामी गौतम का जन्मदिन है साल 2012 में यामी का बॉलीवुड डेब्यू विक्की डोनर से हुआ और ये फिल्म काफी हिट रही और यामी को बड़े पर्दे पर तुरंत पहचान मिल गई तो आइए सुन लेते हैं फिल्म एक्शन जैक्शन से ये प्यारा सा गीत
नींदों में तू ख्वाबों में तू सांसों में तू बसती है यादों में तू लम्हों में तू आंखों में तू हंसती है हर जगह अब दिखे तू अपने दिल का भी काम तमाम है बस तेरी बस
इसके साथ ही रेनू और मुझे दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत
नमस्कार।